హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భగవద్గీత చాప్టర్ 8 టెక్స్ట్ నంబర్ 15 and 16. ఇస్ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన మే ప్రవేశ్ కనే సే పహలే గురు ఆర్ గౌరంగ సే కృపా కి యాచన కర్తే హుయే మంగళాచరణ కరేంగే తాకి హమ్ జో అధ్యయన కర్ రహే హై ఉస్కా పూరా పూరా లాభ ప్రాప్త హో సకే జో కి హై కృష్ణ ప్రేమ కి ప్రాప్తి. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रशासं सहगणरघुनाथ वीतं तं सशिवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्री अद्वैतं गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद् गीता चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति. आज भगवान श्री कृष्ण हमें हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ द लाइफ जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य के विषय में बता रहे हैं. अत्यंत ही सुंदर श्लोक है श्लोक नंबर 15 और 16. आज हम इन दोनों श्लोकों को पढ़ेंगे और भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं. तो कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. भगवान कहते हैं मामोपेत्य പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനഃ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ശബ്ദാർത്ഥ മാം അർത്ഥാത് മുജ്കോ ഉപേത്യ അർത്ഥാത് പ്രാപ്ത് കർക്കെ പുനഃ ഫിർ സെ ജന്മ ദുഃഖാലയം ദുഃഖം കെ സ്ഥാൻ കോ അശാശ്വതം ക്ഷണിക് ന കഭി നഹി ആപ്നോതി പ്രാപ്ത് കർത്തെ ഹൈ മഹാത്മാനഃ മഹാൻ പുരുഷ് സംസിദ്ധിം സിദ്ധി കോ പരമാം പരം ഗതാഃ അർത്ഥാത് പ്രാപ്ത് ഹുവേ ഹൈ. ഭഗവാൻ കേത്തെ മാം ഉപേത്യ പുനർജന്മ, ജോ മുജേ പ്രാപ്ത് കര ലേത്ത ഹൈ ഓർ ദുബാര ഉസ്കാ ജന്മ വോ ഭി കഹാ ദുഃഖാലയം ദുഃഖോ സെ ബരേ ഹുവേ ഇസ് സംസാര മേ ഓർ അശാശ്വതം ജോ കി ടെംപററി ഹൈ ഉസ്മേ നാപ്നുവന്തി കഭി നഹി ഹോതാ ക്യോകി ജിനോനെ മുജേ പ്രാപ്ത് കിയാ ഹൈ വോ സാധാരണ തോ ഹൈ നഹി വോ ക്യാ ഹൈ മഹാത്മാന വോ മഹാത്മാ ഹൈ ഓർ വോ വാപസ് ജന്മ ക്യോ നഹി ലേതേ ക്യോകി സംസിദ്ധിം ഉന്നോനെ പെർഫെക്ഷൻ പ്രാപ്ത് കര ലീ ഹൈ ദ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഉൻകോ ക്യാ പ്രാപ്ത് ഹോ ഗയാ പരാം ഗതി ക്യോകി ഭഗവാൻ പരാം ഗതി അബ് ദേഖോ ഭഗവാൻ യഹാ പർ ദോ ചീസേ ബതാ രഹേ ക്യോകി ഉന്നോനെ പരം ഗതി പ്രാപ്ത് കര ലീ ഓർ പെഹ്ലേ ബതായ മാം ഉപേത്യ ഇസ്സെ ഹമേ ക്യാ പതാ ചൽതാ ഹൈ കി ഭഗവാൻ ബതാ രഹേ ഹൈ കി പരം ഗതി തോ മേ ഹൂ ഓർ വാസ്തവിക ഗതി ലക്ഷ്യ ജബ് ജീവ കോ പ്രാപ്ത് ഹോ ജാതാ ഹൈ ഫിർ ഉസേ പുനഃ കഭി ഭി ഇസ് ദുഃഖോ സേ ഭരേ ഹുവേ സംസാര മേ വാപസ് ലോട്ടനാ നഹി പഡ്താ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജി അത്യന്ത സുന്ദര രീതി സേ സംജായേംഗേ താത്പര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ദ്വാരാ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ ഹോ. ബഹുത് ഹി സുന്ദര ബാത് യഹാ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജി കേത്തേ ഹൈ കി ചൂംകി യഹ നശ്വര ജഗത് ജന ജരാ മൃത്യു കെ കലേശ സേ പരിപൂർണ ഹൈ കി യഹാ പർ ഭലെ ഹി കോയി കേ സക്താ ഹൈ കി ഭഗവാൻ നേ കഹാ ഹൈ മാം അപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, ലേക്കിൻ മുജേ തോ കോയി ദുഃഖ നഹി ഹൈ മേ തോ സുഖീ ഹൂ. ലേക്കിൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജി ബോൽതേ ഹൈ യേ മത് ഭൂലോ കി ഭലെ ഹി തും കിത്നേ ഭി സുഖീ ഹോ ലേക്കിൻ ഇൻ ചാർ ദുഃഖോ സേ തോ തും കഭി നഹി ബച് സക്തേ ജബ് തക് കി തും ഇസ് ഭൗതിക ജഗത് മേ രഹേ തോ കൗൺ സേ ദുഃഖ ഹൈ. ജന മൃത്യു ജരാ വ്യാധി അർത്ഥാത് ഉത്പന്ന ഹോനാ പേദാ ഹോനാ ഓർ ബൂഢാ ഹോനാ ഓർ ബിമാർ ഹോനാ ഓർ മൃത്യു കോയി ഭി ജീവ ഇൻസേ ബച്ചാ ഹുവാ നഹി ഹൈ. അതഃ ജോ പരം സിദ്ധി പ്രാപ്ത് കർത്താ ഹൈ ഓർ പരം ലോക കൃഷ്ണ ലോക യാ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ കോ പ്രാപ്ത് ഹോതാ ഹൈ വഹ വഹാ സേ കഭി വാപസ് നഹി ആനാ ചാഹതാ. കോൺ ചാഹേഗാ ആനന്ദ കേ ആഗാര സേ ദുഃഖോ കേ സാഗർ മേ ആനാ ഹനാ. കൃഷ്ണ പ്രഭുപാദ ജി ബോൽതേ ഹൈ കി വോ പരം സിദ്ധി ഹൈ കൃഷ്ണ ലോക കൃഷ്ണ പ്രാപ്തി ഓർ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാം ജോ ഭി ജായേഗാ വോ വഹാ സേ കഭി ഭി ആനാ നഹി ചാഹേഗാ. ഓർ വേസേ ഹി റൂൽ ബതാ രഹേ ഭഗവാൻ നേ തോ യഹാ പർ ബതാ ദിയാ कि वो कभी आता ही नहीं। माम पत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंति महात्। नाप्नुवंति यानी आप ना आपनो यानी कभी नहीं आता है, ना मन कभी नहीं वापस आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है और आता भी नहीं है। और श्रीला प्रभुपाद जी बोलते उसको आने का मन ही नहीं होता है, आना चाहता ही नहीं है। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामिप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं चाहते। यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने कहा है नाप्नुवंति महात्मानः, जो मुझे प्राप्त करते हैं वो महात्मा है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी महात्मा की डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो महात्माओं का गंतव्य है। ये जो महात्मा कहाँ जाते हैं, भगवान ने कहा माम उपेत्य, वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो महात्मा लोक का क्या मतलब है कि जो शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और फिर उनसे भक्ति करना अर्थात उनसे श्रवण करते हैं, दिव्य संदेश को प्राप्त करते हैं, भगवान की कथाओं को भगवान के शब्दों को श्रवण करते हैं और फिर धीरे 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 उनकी कृष्ण भावनामृत उनके हृदय में कृष्ण कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है। फिर क्या होता है, फिर उनको सारा जगत जो है वो रसहीन दिखता है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तत, क्योंकि जब हायर टेस्ट किसी को मिल जाता है तो ये भौतिक टेस्ट तो उसे अच्छे नहीं लगते, तो फिर वो क्या करता है, किधर भी जाना नहीं चाहता, ना ही किसी भौतिक लोक में जाना चाहता है और ना ही किसी आध्यात्मिक लोक में। अब भौतिक लोक जैसे इस संसार में कैसे हम लोग रहते हैं, जैसे कोई अगर पाकिस्तान में रहता है तो क्या सोचता है, मैं इंडिया चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। कोई अगर इंडिया में भी उल्लास में रहता है तो क्या सोचता है कि मैं अगर मायापुर में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा तो सुखी हो जाऊं। लेकिन भगवान ने इस पूरे संसार को जितने भी उसमें लोग आते हैं, खाली एक लोक की नहीं, हम तो यहाँ पर भूलोक नहीं, कोई है ना दूसरी जगह पे रहते तो बोलते अमेरिका में कोई दुख नहीं, हम अमेरिका में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बोलेंगे स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई बोलेंगे दुबई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोई बोलेंगे कि हम थाईलैंड में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पर आनंद है वहां पर आनंद है। सब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज करके वो सुखी होना चाहते हैं ना, इधर उधर जाते। और इवन एक ही कराची में जैसे हमारा घर होता है तो हम क्या सोचते हैं, ली मार्केट को छोड़ के अगर हम है ना क्लिफ्टन में चले जाएंगे या गार्डन में चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये केवल मन का भ्रम होता है। आनंद इस संसार में है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने बनाया ना ये संसार। तो भगवान कहते हैं यह संसार मैंने कैसा बनाया, दुखालयम, दुखों से भरा हुआ है। तो आप किसी भी लोक में भी चले जाओगे, इवन एक सिटी की भी बात छोड़ो, एक एरिया की भी बात छोड़ो, एक कंट्री की भी बात छोड़ो, अगर आप कोई दूसरे लोक में भी चले जाओगे ना, स्वर्ग लोक में, तो भी आप आनंद आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जगह पर मैंने दुख ही दुख रखा है। ये संसार रखा ही दुख देने के लिए गया है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते ना, वो कभी भी किसी भौतिक लोक में जाना नहीं चाहते, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। कितनी हैरत की बात है, हम लोग कितने मूर्ख हैं कि इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने आप को भगत बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त की महात्मा की डेफिनेशन बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि उसे किधर भी जाना नहीं होता है, वो क्या करता है, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। कृष्ण तो मुझे कहाँ पर भी रखो, नरक में भी रखो या कहीं पर भी रखो, बस तुम्हारा सामीप्य होना चाहिए, तुम्हारा दर्शन होना चाहिए, तुम्हारी सेवा होनी चाहिए, तुम्हारी भक्ति से दूर मत करना, वरना जीना सहज नहीं होगा। बाकी तुम्हारी भक्ति करते करते अगर मुझे नरक में भी रखोगे ना, सबसे ज्यादा दुखदायक स्थिति में भी रखोगे ना, फिर भी तुम्हारी भक्ति जो है वो मुझे उसके द्वारा ही आनंद आएगा। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं भगवान को, विपदः संस्तुतः साक्षात् तत्र तत्र जगत गुरु, कि मैंने जितनी जितनी जब तक मेरे जीवन में आज तक केवल विपता ही विपता आई है, दुख ही दुख देखे मैंने, लेकिन आज सुख प्राप्त हुआ, क्योंकि आज क्या हुआ था, युद्ध समाप्त हो गया था महाभारत का और महाराज युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन मिल गया था। तब वो भगवान को कहती है, कृष्ण तुम जा रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे तो वो सारे दुख चाहिए, वो भी कब, तत्र तत्र, वो सारे सारे सुख चाहिए, कब चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। मैं चाहती हूँ बार बार वो दुख आए, क्योंकि वो दुख बहुत आनंददायक थे और उन दुखों में मैं तुम्हें याद कर सकती थी, और जब याद करती थी तो तुरंत ही तो तुम्हारे दर्शन हो जाते थे, और जिसे तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं उन्हें फिर कभी भी दुख को, दुख के दर्शन होते नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि बारंबार वो दुख आए। तो यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते कि भक्त की यही परिभाषा है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल कृष्ण का सानिध्य चाहिए होता है, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं प्राप्त करने के लिए। शबरूपा जी कहते हैं श्लोक में भगवान कृष्ण सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। वे भक्त कृष्ण भावना में अपने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं, वो सबसे बड़ी आत्माएं हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। और भगवान कहते हैं जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो अवश्य मेरे पास आते हैं। मन मना भगवत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, जो मन में मेरा चिंतन करते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं। तामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषिने, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वो अवश्य मेरे पास आते हैं। और मेरे पास आने के बाद भगवान ने आज हमें बताया, माँ उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, कि मुझे एक बार प्राप्त कर लेते हैं फिर इस दुखों भरी दुनिया में न आप नवंति महात्मा न कभी भी आते नहीं है दोबारा, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनपारणम्। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान सबसे पहले इस भौतिक जगत की डेफिनेशन बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत क्या है। दुःखालय अर्थात दुखों का आलय है। आलय ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज को डेकोरेट करके रखा गया हो, यानी कि एक चीज जैसे हम कहते हैं औषधि आलय, औषधि कहते हैं दवाई को, और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी टाइप टाइप की दवाइयाँ जो हैं वो डेकोरेट करके रखी गई होती हैं सेटिंग के साथ, उसको बोलते हैं औषधालय। और बोलते भोजनालय, यानी कि ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिशेस जो हैं वो बना के रख दिए गए होते सब लोग के लिए कि जो यहाँ पर आएगा वो विवश हो जाएगा खाने के लिए, क्योंकि इतना सुंदरता के साथ पेश किया जाता है, रखा जाता है कि आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और हमें पता है ये भौतिक जगत में भगवान ने क्या रखा है, दुख आलय, यानी कि दुखों को संजो कर रखा है, सारे दुखों को डेकोरेट करके रखा है। और जो कोई आएगा उसे डेफिनेटली वो दुख को परचेज करना होगा, उसको किसी भी, अब देखो आप बोलोगे नहीं ऐसा थोड़े होता है, हम दुखों को थोड़े ना लेते हैं, दुख तो खुद ही खुद ही आ जाते हैं, हम लेते तो सुख को हैं, लेना तो हम सुख को चाहते हैं। तो देखो हम किसी भी मार्केट में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक चीज को परचेज करते हैं और उसके लिए वो चीज हम चाहते हैं परचेज करना, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ धन देना पड़ता है। धन से सब कोई प्रेम करते हैं, कोई ये सोचता नहीं है कि मैं अपना धन समाप्त कर दूं या लुटा दूं, है ना। लेकिन क्योंकि उसे पर्टिकुलर वस्तु को परचेज करने के लिए साथ साथ में धन देना होता है ना, उसी तरह से ये भौतिक जगत में हम कोई सुख चाहते हैं तो उसके साथ साथ हमें दुख भी प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ हो जाता है। जैसे परचेज करने के टाइम पर धन साथ साथ में हो गया ना, उसी प्रकार इस संसार का हर कोई दुख जो है, हर कोई सुख जो है, उसके साथ साथ दुख भी आता है। एक अब बता, भगवान श्री कृष्ण ने 5.22 भगवान ने कहा, ये ही संस्पर्श जाबो का दुख यो नयते, ये ही संस्पर्श जाबो का, ये माना जो ही ना निश्चय ही, संस्पर्श जा यानी भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से। अब इस संसार में जो कुछ भी आपको सुख प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से प्राप्त होता है ना। तो क्या होता है, वो भोग जो हम भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं दुख योनयो, वो दुख का कारण बनते हैं। ए वही, यहाँ पर भगवान ने लिखा है दुख योनय ए वही, कि निश्चित रूप से वो आपके दुख का कारण बनेंगे। ऐसा मत सोचना कि इस भौतिक जगत की कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करके हो सकता है आपको खाली सुख प्राप्त हो, खाली सुख नहीं प्राप्त होगा। ये भगवान के शब्द हैं, हमें भगवान के शब्दों पर विश्वास करना चाहिए और इन भौतिक वस्तुओं से जो आनंद प्राप्त होता है संस्पर्श जब होगा यानी भौतिक इंद्रियों से जो प्राप्त होता है उसमें कभी भी लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा वो तो आपके दुख का कारण बनेंगे, बनेंगे अवश्य बनेंगे, ए वही निश्चित रूप से बनेंगे। और क्यों बनेंगे, भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि आद्यंतवंत कांतेय, क्योंकि देखो आप क्या हो, शाश्वत आत्मा हो, और ये सारे सुख भौतिक संस्पर्श जब होगा भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं। अब शरीर के आनंद को आत्मा कभी भी शरीर के आनंद प्राप्त करने से आत्मा कभी भी आनंदित हो नहीं सकती है, क्योंकि शास्त्र कहता है न अल्पे सुखम, अल्प वस्तु में कभी भी आनंद होता ही नहीं है। तो किसके लिए, आत्मा के लिए अल्प वस्तु में आनंद नहीं होती। तो भगवान कहते हैं क्योंकि इसका आदि है और इसका अंत है। अब आत्मा जो है वो अक्षय है, ना उसका कभी अंत हुआ है होगा और ना ही कभी आदि है, ये अजन्मा है, पुरातन है, जो ये इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान के अंदर हैं। लेकिन क्योंकि भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा की क्वालिटी से मैच करे, इसलिए भौतिक जगत की हर वस्तु उसके दुख का कारण बनती है, क्योंकि उसमें आदि और अंत होता है। तो भगवान कहते ना तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इसके अंदर कभी भी फंसते नहीं है, इनमें कभी भी इंजॉय नहीं करते, किसमें, भौतिक इंद्रियों के आनंद में। तो जो कुछ भी इस संसार में, आज भगवान पुनः वही बात बता रहे हैं कि मां उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, क्योंकि ये संसार में जो कुछ भी आपको वस्तु दिख रही है वो दुख देने वाली है। जो पूरा संसार में मैंने दुख ही दुख सजा के रखे हैं और ये अशाश्वत है। आपको जो भी इस संसार में मिलेगा वो टेम्पररी है, आदि अंत अंत, उसका आदि भी है तो अंत भी है, तो कभी भी आपको कभी भी आनंद स्पेशल आनंद प्राप्त नहीं करेंगे। तो भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया दुखों से भरा हुआ। भगवान कहते हैं देयर इज नथिंग एज जस्ट दुख, इस संसार में दुखों के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। परंतु दुख की बात तो ये है कि मनुष्य जो इस संसार में रहता है वो फिर भी इतना सब जब भगवान ने बता दिया संसार के बारे में, फिर भी इसी संसार में आनंद प्राप्त करने की इच्छा करता है और उसी के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद करता है। वो सोचता है ये कर लूं सुखी हो जाऊं, ये कर लूं, बच्चा होता है सोचता है ये प्राप्त हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ना। फिर बड़ा हो जाता है फिर बोलता है इस ये लड़की के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, फिर शादी हो जाती है फिर बोलता है मुझे इस एक अच्छा सा घर मिल जाए और अच्छी नौकरी मिल जाए फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर नौकरी भी मिल जाती है फिर वो घर का एरिया अच्छा नहीं लगता बोलता नहीं दूसरी जगह पे मैं चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसे करते करते। अभी भगवान ने बोल दिया, बात को मानो ना, भगवान ने क्या कहा है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है, दुख काल है। अब एक मेंढक है एक कुएं में रहता है, है ना, एक कुएं में मेंढक रहता है, लेकिन ये कि मेंढक वो कुआं जो है ना वो बिल्कुल सूखा हुआ है, वो सूखे हुए में कुएं में उसको बहुत प्यास लग रही है, वो इधर से उधर जा रहा है इधर से उधर, कि वो सोचता है नहीं सुख इसके अंदर पानी होना चाहिए, ये कुआं है मैं सर्च करूंगा पानी को किसी न किसी तरह से प्राप्त करूंगा और अपनी तृष्णा बुझाऊंगा। लेकिन भले वो पूरी जिंदगी कुएं में घूमता रहे लेकिन कभी भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और इसी तरह से स्ट्रगल करते 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 मृत्यु आ जाएगी। उसी प्रकार हम भी इस संसार में आए हैं, परंतु वास्तव में हमारे आने का कारण क्या है, क्या करना है, दुखों से कैसे छूटा जाए वो नहीं सोचते, बस अपनी बुद्धि से ही डिसीजन लेते हैं ऐसे कर लूं तो सुखी हो जाऊं ऐसे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरह से इन दुखों का सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे, ना सोचते हैं कि भले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान ने कि दुख है लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग है ना न्यू इन्वेंशन करते हैं, वो सोचते हैं इस ये इन्वेंट किया जाएगा तो इससे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो क्या होता है दूसरी नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मतलब एक प्रॉब्लम सोल्व होती है तो साथ साथ में दूसरी प्रॉब्लम आती भी तो है। तो इस संसार में चाहे कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, कोई बड़े से बड़ा धनवान हो, कोई बड़े से बड़ा सुंदर हो, आप किसी से भी पूछो लेकिन उसके जीवन में दुख अवश्य होंगे। मतलब इस संसार में भौतिक जगत में हो सकता है कि हमें कुछ आनंद दिख रहा हो परंतु वो आनंद भी अवश्य दुखों से घिरा हुआ होता है, ये कृष्ण यहाँ साफ साफ बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहता है तो यूं समझिए कि वो समुद्र में रहकर भीगने से बचना चाहता है। वो जो चाहता क्या है कि मैं दुखों से भरे हुए समुद्र में रहूं लेकिन दुखी ना रहूं, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आप समुद्र में रहोगे तो क्या होगा, आपको भीगना पड़ेगा। और साथ साथ में कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो लोगों को चीट करते हैं, क्या बोलते हैं आप यह मंत्र पढ़ोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिंदगी के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं कि ये जगत दुखों का घर है, कृष्ण ने संसार को बनाया है तो फिर इस जगत में सुखी होने की इच्छा करना मूर्खता है। भगवान कहते हैं नतेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान होते हैं वो तो इस संसार में सुखी होने की इच्छा ही नहीं करते, क्या चाहते हैं वो इस संसार से निकल कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस संसार में भगवान ने सुख नहीं रखा है तो वो सॉल्यूशन नहीं निकालते कि ये कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा ये कर लूं, नहीं। अब वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि किस तरह से इस भौतिक जगत से निकलूं बाहर तो मैं सुखी हो जाऊं। तो भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, यदि आपके पास बहुत बहुत दुख हो और एक पर्टिकुलर सुख है तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप उन सारे दुखों को भूल जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे दुख होते हैं लेकिन कहीं से खुशी की खबर प्राप्त हो जाती है कि आपका कोई प्रेमी दोबारा लौट के आ रहा है, तो फिर कैसा लगता है, वो सारे दुख हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार अगर आपके पास बहुत बहुत खुशियां हैं लेकिन अगर कोई एक छोटा एक कोई भी जिससे आपका मन अटैच है वो उसका अगर कोई दुख का समाचार आता है तो आप अपने सारे आनंद भूल जाते हैं। तो इस संसार में वास्तविक कुछ नहीं है। जिसमें मन अटैच होता है उसी से हमें पता चलता है कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। जैसे हम भागवत महापुराण में महाराज चित्रकेतु की कथा पढ़ते हैं कि वो क्या कर उनके पास क्या है, सब समग्र सृष्टि के, वो कोई एक स्टेट के राजा नहीं होते हैं, समग्र जितनी जितना विश्व होता है ना उसके राजा होते हैं वो, एक चक्र चक्र राजा होते हैं, विश्व विजेता होते हैं और उनके पास 1 करोड़ पत्नियां होती हैं और वो भी बहुत सुंदर होती हैं और वो भी बहुत सुंदर होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, धन होता है, यश होता है, परिवार होता है, सुंदरता होता है, बल होता है, तो सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी। उनके जीवन में हम देखते हैं एक व्यक्ति जिन जिन वस्तुओं की इच्छा करता है महाराज चित्रकेतु के पास, वो सारी वस्तुएं हाईएस्ट डिग्री में होती थी लेकिन फिर भी इज फुल विद एंजाइटी, हमेशा दुखी होते थे और उनके पास केवल एक ही दुख होता था, क्या कि उनका कोई पुत्र नहीं होता था, कोई संतान नहीं होती थी। तो सोचते थे कि इतना सब मेरा वैभव है, मैं चला जाऊंगा तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं बचेगा, तो बहुत दुखी होते थे, सदैव सोचते थे, सदैव रोते थे, किसी आनंद का आनंद ही नहीं ले पाते थे। तो ये है भौतिक जगत में आनंद का ये जो प्रिंसिपल है कि हम जिस चीज को इम्पोर्टेंस दी होती है ना वो चीज हमें अगर मिल जाती है तो फिर बहुत सारे दुखों में भी हमें आनंद आता है। लेकिन भले ही 100 करोड़ हमारे पास आनंद हो लेकिन जिस चीज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो यदि हमें प्राप्त नहीं होती है तो हमें दुख होता है। इसलिए हमें अपने मन का जो अट्रैक्शन है ना वो इन भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से हटाकर आनंद के आगाज सचित आनंद भगवान श्री कृष्ण की ओर स्थापित करना चाहिए, भगवान के साथ अपने प्रेम को निर्माण करना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत, केवल एक ही रास्ता है इन दुखों से बचने का, वो क्या है, आप मुझे प्राप्त करो। यदि आपके मन की डोर, मन का अट्रैक्शन जो है वो भगवान के साथ लग जाता है तो फिर भौतिक वस्तुओं की भले वो प्राप्त नहीं होंगी ना तो भी, क्योंकि भगवान का सानिध्य, जैसे हमें श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण के भक्त को भौतिक संसार का कोई आनंद नहीं चाहिए और ना ही आध्यात्मिक संसार का आनंद चाहिए, उसे सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए, वो कृष्ण के सामिप्य को चाहता है, वो कृष्ण के सानिध्य को चाहता है, वो कृष्ण के प्रेम को चाहता है। तो वो भौतिक वस्तुओं को तुच्छ, जैसे राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि जब एक व्यक्ति स्टूल करता है और फिर वो कभी उसकी ओर देखता नहीं है कि कैसा है, मैं कभी कोई देखता तो नहीं है ना, तो उसी तरह से जो भक्त होते हैं ना वो भौतिक सुखों की ओर कभी देखते ही नहीं है और भौतिक जगत को वो शौचालय मानते हैं कि यहाँ पर आओ अपना काम करो और निकलो यहाँ से। और काम क्या है, केवल एक ही काम है कि हम अपने प्रेम को पुनः, जो हमारा प्रेम जो भगवान से छूट गया है, जो वो रिश्ता हमने तोड़ दिया है, उसको येन केन प्रकारे पुनः स्थापित करें और फिर से वापस अपने असली धाम को चले जाएं, अपनी असली जो हमारी स्थिति है, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसको प्राप्त करें। ये भौतिक जगत तो इस योग्य ही नहीं है कि इसमें हम आकर्षित हों किसी वस्तु में, तो हमें क्या करना चाहिए, सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही चाहिए और भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे हम उस टूटे हुए प्रेम की डोर को दोबारा जोड़ सकें। एक बार श्री प्रभुपाल जी से किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हो कि आप शराब मत पियो, वाइन मत पियो, अल्कोहल मत पियो, तो क्या आपने कभी पिया है? आपको क्या खबर कि इसमें कितना आनंद है? Why do you blindly reject these things? आपने कभी आनंद को देखा ही नहीं है। उसी प्रकार कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर ना आनंद नहीं है, तो आप कभी अमेरिका गए नहीं हो, स्विट्जरलैंड गए नहीं हो, थाईलैंड गए नहीं हो और दूसरी जगह पे गए नहीं हो, तो फिर आपको कैसे खबर कि वहाँ पर भी आनंद नहीं है? वहाँ पर जाओ तो आपको पता चले ना वहाँ पर कितना आनंद है। और इन भौतिक जगहों को तो छोड़ो, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि आध्यात्मिक जगत भी जो जितना है यहाँ पर, मतलब जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोक जनक लोक तक ऊपर के जो लोग हैं, उनमें भी आनंद नहीं है। तो आपने जब यहाँ पर ट्रेवल किया ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हर जगह पर दुख ही दुख होते हैं? तो इसका मतलब है, वो ये कहना चाह रहा था कि यदि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, यदि आपने इन भौतिक दूसरी कंट्रीज को देखा ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो वो आनंदमय नहीं है? तब श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, आपने आध्यात्मिक जगत देखा है, आपको पता है कि आध्यात्मिक जगत कितना आनंदमय है? देन व्हाई डू यू ब्लाइंडली रिजेक्ट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? जब आप जो है वो आध्यात्मिक जगत को बगैर देखे कह सकते हैं कि इससे ज्यादा आनंद भौतिक जगत में है, तो हम तो ब्लाइंडली फेथ नहीं कर रहे हैं। हम ये हमारी गलती नहीं है। अगर आप आध्यात्मिक जगत को रिजेक्ट करते हो तो इसमें आपकी गलती है। हमने थोड़ी ना ब्लाइंड फेथ किया है। हम जो कर रहे हैं ये तो महान भक्तों ने बताया है, ये तो शास्त्र ने बताया है, ये तो संतों ने बताया है, ये तो साक्षात भगवान ने बताया है कि मेरे परमधाम में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तो मेरे परमधाम में आ जाओ और वहां पर आने के बाद तुम्हें कभी भी इन दुखों से भरे संसार में नहीं आना पड़ेगा। हम तो भगवान की बात पर विश्वास कर रहे हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, ये ही संस्पर्श जाग भोगा दुख योनय एवते। संसार में तुम्हें जो भी आनंद प्राप्त होता है उसके साथ साथ अवश्य दुख होता है। तो तुम क्या करो, न तेषु रमते बुधा अक्कल मन बनो, और इनके अंदर आनंद खोजना बंद कर दो, बल्कि यहाँ से निकल कर कहाँ पर आओ, माम उपेत्य मुझे प्राप्त करो, तो तुम इन दुखों से बच सकते हो। दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना, क्योंकि परम सिद्धि तो मुझ तक पहुंचना है। मगर फिर भी न जाने क्यों हम इन भौतिक जगत के कष्टों से भरे हुए आनंद को ही सब कुछ मानते हैं। हर कोई सोचता है कि हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हम क्यों, ऐसा भगवान ने लिखा है कि हम दुखी नहीं। लेकिन फिर क्या होता है, कभी चार दिन सुखी होते हैं, फिर पांचवें दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है जीवन में, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर रोने लग जाते हैं, फिर वापस से सुख आ जाता है, फिर वापस से। तो इस संसार में सुख नहीं है। फिर आप बोलोगे कि वो क्या है जो दिखता है दुख के बाद। अब कभी कभी क्या होता है, बहुत बहुत दुख होता है, और कभी कभी वो दुख कम हो जाता है, और जब दुख कम हो जाता है तो उसको हम सुख समझते हैं। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, जो अपराधी होते थे उनको क्या लिखा जाता, समुद्र में लेकर जाते थे और पानी में कमर से ऊपर तक पानी होता था और उसमें खड़ा करते थे उसको, और फिर बालों से पकड़ के उसके मुंह को पानी के अंदर डाल देते थे। वो छटपट आता था, जोर जोर से हिलता था कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि दम घुट रहा होता था पानी के अंदर उसका। फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता था। फिर क्या करते थे, वो जो जेलर होते थे वो उसको बाहर निकालते थे। फिर वो क्या करता था, मतलब सुख आ गया। ये सुख नहीं था, अभी भी वो कैदी है, अभी भी वो जेल में है, अभी भी कष्ट उसके सर पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा दुख कम हो गया तो उसे क्या लगता है कि अभी शायद आनंद मिल गया। और फिर वापस से क्या करता था जेलर, उसको वापस से पानी में डालता था, वो वापस से छिटपटाता था, तड़प रहा था, थड़फड़ा रहा होता था। फिर वापस से उसको जब बाहर निकालता था तो ऐसे करता था कि मैं सुखी हो गया हूँ। तो इस संसार में जितने भी सुख आपको दिख रहे हैं वो सब ऐसे ही है, क्योंकि इस संसार के लिए भगवान शास्त्र कहता है परम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्य। इस संसार में एक एक कदम पर विपदा है, हर एक क्षण में आपको दुख मिलेगा, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, बल्कि सुखी हैं, माय लाइफ इज गोइंग एकदम नाइसली, बहुत सुंदर टिप टॉप जा रही है, तो वो कहेंगे दुख कहाँ है, और मुझे तो इस संसार में जो कुछ चाहिए तो वो प्राप्त है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, बैंक बैलेंस है, बंगलो है, गाड़ियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही आप ये दुख ना भी देखो ना, अगर आपको ये सब फील नहीं भी हो रहा है ना, तो भी जरूरी थोड़ी है कि एक्सपीरियंस हो उसके बाद ही आप मानो। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि कल आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, क्योंकि दुर्घटना होने वाली, इस संसार है दुख काले हम, तो भगवान ने कहा है कि संसार में केवल दुख आएंगे, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए उसके बाद तुम यकीन करो कि हाँ कृष्ण तुमने सच कहा था, ये संसार वाकई दुखमय है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक तुम ठोकर नहीं खाते तब तक तुम बोलो नहीं मैं पत्थर को ठोकर मार के आगे निकल जाऊंगा या पहाड़ को ठोकर मार के आगे निकल जाऊंगा। नहीं, भगवान ने कह दिया है कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, तो हमें कृष्ण की इस बात पर फेथ करके हमें इस भौतिक संसार को दुख काले हम समझते हुए इससे बाहर जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ना कि यहीं पर आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते 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 अपने जीवन को बर्बाद कर देना चाहिए। यह संसार में हर जगह दुख और कष्ट होते हैं, परंतु एक और भी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आपको, जो कि भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको इन कष्टों का कोई भय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। जब भगवान क्योंकि कहते हैं कौन्तेय प्रति जाने हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त को तो मैं कभी भी नाश होने नहीं दूंगा, तो भक्त को पूरा विश्वास होता है किस पर, कृष्ण पर। परंतु भक्त सदैव भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की सेवा करता है, वो इन भौतिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता। वास्तव में भक्ति का वास्तविक लक्ष्य ये नहीं है कि हम दुखों से बचने के लिए कृष्ण के पास आए, हम कोई आर्त बनकर भगवान के पास नहीं जाते हैं, भक्ति तो इससे बहुत ऊपर की बात है, हाँ भक्त तो इससे बहुत आगे है। भक्त को तो इस भौतिक दुखों से कोई भय ही नहीं होता, वो भगवान की सेवा इन दुखों से छूटने के लिए नहीं करता, बल्कि वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान को प्रेम किए बगैर, भगवान की सेवा किए बगैर, भगवान की भक्ति किए बगैर उसको किसी और वस्तु में आनंद आता ही नहीं है, उसका कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं होता है, वो चाहे स्वर्ग में भी रहे या नरक में भी रहे तो भी उसे केवल भक्ति में ही आनंद आता है, इसीलिए वो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए शास्त्र कहता है नारायण परा सर्वे न कटश्च न भव्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम्। नारायण परा सर्व, जिन भक्तों ने नारायण की शरण ग्रहण कर दी है, न कटश्च न भवति, वो किसी भी वस्तु से ना कोई भय करता है और न ही प्राप्ति की इच्छा करता है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, ना उसे स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, ना उसे मुक्ति के प्राप्त करने की इच्छा होती है, और ना ही उसे नरक का भय होता है। अपि तुल्यार्थ दर्शनम, वो क्योंकि भगवान से प्रेम करता है उसके लिए सब कुछ तुल्य, एक ही तुल्य है, बराबर है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे दुखों का आधार सागर भी क्यों न होगा, भगवान यदि मेरे साथ हैं तो किसी चीज की कमी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कृष्ण का सानिध्य ही सुख की गारंटी है। इसलिए वो नरक में जाने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, लेकिन वो सुखों से भरे हुए स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि स्वर्ग के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.21 में कि श्री पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब आप स्वर्ग में चले जाते हो तो फिर वहाँ पर जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और पता है आपको, जब कोई स्वर्ग में जाता है और उसके बाद जब वापस भौतिक जगत में आता है तभी ये वाला जो भौतिक जगत है ना, वो उसे और भी ज्यादा दुखदायक लगता है। क्योंकि जब कोई जीव बहुत बहुत अय्याशी कर लेता है, बहुत बहुत आनंद का जीवन बिताकर आता है, फिर अचानक से, जैसे अगर कोई बहुत ही स्विट्जरलैंड में रहते हैं या बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं, अचानक से वो किसी बहुत ही गर्म एरिया में चले जाएंगे तो क्या होगा, उनके लिए अनबियरेबल हो जाएगा। ये उस जगह पर वो बेयर ही नहीं कर पाएंगे, रह नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको गर्मी हो रही है, वो उनको आदत ही नहीं होती है। तो उसी तरह से जब कोई स्वर्ग से होकर आता है ना, तो उसको भौतिक जगत बिल्कुल भी उसमें रह नहीं सकता है, वो बिल्कुल इतना ज्यादा उसको दो, जैसे अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए है, अगर से उसको बोला जाए कि कल से आपको 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी, फिर तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मर जाएगा ना। तो उसी तरह से ये भौतिक जगत में भले आप ऊपर के लोकों में जाओ, फिर भी आगे कहा भी हम श्लोक पढ़ेंगे, इसमें भगवान बताएंगे कि दोबारा से आपको पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा। और जब ऊपर के लोकों से वापस जब वो पृथ्वी लोक पर आते हैं, फिर वो उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन भक्त क्योंकि भगवान की भक्ति करता है तो किसी चीज से भी नहीं लगता उसको, ना स्वर्ग से डर लगता है, ना नरक से डर लगता है, ना भौतिक जगत से, ना ही किसी वस्तु की इच्छा होती है। वो केवल और केवल भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यही परम सिद्धि है कि आप मुझे प्राप्त करो। तो भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान का सानिध्य प्राप्त करना। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो जब भगवान भक्त जब भगवान का नाम लेता है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसको इतना आनंद आता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो भगवान का नाम है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, ये चैतन्य विग्रह है। जितना भगवान के अंदर पावर है, जितने महाप्रभु कहते हैं कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, भगवान के अंदर जितनी भी शक्ति है भगवान ने अपने नाम के अंदर रख दी है। और नियमित स्मरणेन काला, और उसको स्मरण करने का कोई नियम भी नहीं रखा है। एतादृशी तव कृपा भगवान ममपि, ये भगवान आपकी इतनी असीम अनुकंपा है, परंतु फिर भी दुर्दैव मी दृश्य महाजनी न अनुराग, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि उस पवित्र नाम की ओर मेरा कोई आकर्षण ही उत्पन्न नहीं होता। तो हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, और यही इस संसार में सुखी होने की एकमात्र विधि है। क्योंकि यही है, भगवान का पवित्र नाम ही माम उपेत्य है, भगवान को प्राप्त करना है। क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये नाम जो है वो चिंतामणि है और कृष्ण का साक्षात विग्रह है, यही है कृष्ण को प्राप्त करना। और हमें यदि हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते हैं नाप्नुवन्ति महात्मानः दुःखालयम् अशाश्वतम्, ऐसा महात्मा कभी भी इस भौतिक दुखों से बने संसार में वापस नहीं आता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। लेक्चर बड़ा हो गया है, 16 लेक्चर कल सुनेंगे। हरे कृष्ण, श्लोक नंबर 16 कल।